आस्था की इस बात पर आहान के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और वो ठिठक कर बोला, ओ भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर हम अरमान भाई से मिलने जाएंगे तो वो हमारे सर पर बम फोड़ देंगे अब आगे और हमें डांटेंगे कि कल रात हम लड़कियों के साथ वहाँ क्यों बैठे थे। फिर वो रौनक की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से में बोला, क्या तुम मुझसे दूर नहीं हट सकती थी? क्या तुम्हारा मेरे कंधे पर सिर रखना ज़रूरी था? हाँ, अगर मैंने अरमान भाई पर ध्यान नहीं दिया तो कम से कम तुम तो अरमान भाई पर ध्यान दे सकती थी ना, अब मैं क्या करूँ? आहान की बात सुनते ही रौनक की आँखें आश्चर्य से फैल गईं। फिर वो कुछ सोचकर फट से बोली, अच्छा, जब तुम्हारा ही ध्यान भाई पर नहीं था तो मैं अरमान भाई पर ध्यान देकर क्या करती? वैसे भी मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर था। अब जैसे ही रौनक ने बेबाकी से ये कहा तो ये सुनकर आहान का दिल एक पल के लिए धक्सा रह गया और उसके दिल में गिटार सी मीठी धुन बजने लगी। तभी ध्रुव ने आहान के कंधे को थपथपाया और उसे तुरंत होश लाते हुए बोला, हो गया तेरा, तू अपने दिल में ये गिटार बजाना बंद कर, सब लोग यहीं पर हैं। तब तक आकाश और सुमित भी वहाँ आ गए और अगले ही पल वो उन्हें समझाते हुए बोले, देखो, जब तक हम अरमान के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिरकार वो हमसे क्या बात करना चाहता है, तो बेहतर है कि हम जाकर अरमान से बात कर लेते हैं। और रही बात कि कल रात लड़कियों के कंधे पर सर रखकर सोने की, तो वो हमारी पत्नी है और उनका हम पर पूरा अधिकार है। अब जैसे ही आकाश ने बेखौफ होकर ये कहा तो उसके शब्द सुनते ही सभी लड़कियों के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी सुमित आकाश की बात से सहमत होते हुए आगे बोला, हाँ, और अगर हमें अरमान को एक्सप्लेन करना पड़ा तो हम अपनी अपनी शादियों के बारे में भी उसे बता देंगे, लेकिन अब हम अपनी पत्नी को और दुखी नहीं करेंगे। सुमित की इस बात पर सभी लोग एक दूसरे की शक्ल अविश्वास से देखने लगे। वहीं दादाजी, अभिमान जी और आस्था ये सुझाव सुनकर कहीं ना कहीं एकदम से घबरा गए, क्योंकि अगर ये सारी बातें अरमान को बता दी गईं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिलहाल सभी ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे और एक एक करके सभी स्टडी रूम में चले आए। वहीं अरमान ने तीखी नजरों से उन सब लड़कों को देखा। उसकी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य घूमने लगा, सब लड़के कैसे अपनी अपनी पार्टनर्स को गोद में उठाकर ले जा रहे थे। फिलहाल अपने ख्यालों से बाहर आकर अरमान ने ध्रुव की ओर गंभीरता से देखा और उससे पूछा, ध्रुव, एंटीडोट का काम कहाँ तक पहुँचा है? कब तक मेरा एंटीडोट बन जाएगा? जितना जल्दी हो सके कोशिश करो, क्योंकि मुझे अब हर पल बहुत भारी सा लग रहा है। बिना इन दो सालों की यादों के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा खो दिया है। अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, फिर वो बाकी सबको गहरी नजर से देखकर बोला, और हाँ, जितना जल्दी हो सके पता लगाओ कि किस शख्स ने मुझे इस सिचुएशन में पहुँचाया है। और हाँ, हमारे शहर में जितने भी दुश्मन है मैंने उन्हें किडनैप करने के लिए कहा था, क्या उनकी किडनैपिंग हुई? उसका ये सवाल सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर एकदम से देखने लगे, क्योंकि अरमान ने अब तक कल रात के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था। तभी वहाँ आहान की आवाज़ सुनाई दी, भैया, ऑलरेडी जितने भी शहर में आपके दुश्मन थे हमने उन सबको अगवा कर लिया है और उन सबको फार्म हाउस पर कैद करके रखा है, आप चाहें तो जाकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि वो चारों अच्छे से जानते थे कि ये काम अरमान के किसी भी दुश्मन का नहीं है, जो बचे कुछ दुश्मन मौजूद थे वे पहले ही अरमान के डर कर उनकी शरण में आ गए थे। वो सब जानते थे कि राजवीर के बारे में अरमान को सीधे सीधे नहीं बताया जा सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ गुंडों को जो शहर में ज्यादा अपराध फैला रहे थे उन्हें किडनैप करके फार्म हाउस पर कैद कर दिया। अब ये सुनकर अरमान झट से बोला, बहुत दिन हो गए हैं सही से खून की होली नहीं खेली, लगता है अब वक्त आ गया है। उसके शब्द सुनते ही कहीं न कहीं चारों अंदर ही अंदर सहम गए, लेकिन वो चाहकर भी अरमान से कुछ पूछ नहीं सकते थे। तभी आकाश ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अच्छा अरमान, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? अरमान ने सिंपली जवाब दिया, नहीं, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, मैंने जो काम सौंपा है उसका फटाफट पता लगाओ, तब तक मैं फार्म हाउस जाकर उन अनजान दुश्मनों से मिलता हूँ। ये बोलकर अरमान उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। अरमान के जाने के बाद चारों लड़के हैरानी से एक दूसरे को नासमझी में देखने लगे। तभी आहान ने एकदम से आकाश को देखते हुए पूछा, आकाश भैया, ये क्या हुआ? अरमान भाई ने कल रात के बारे में हमसे कोई सवाल ही नहीं किया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरमान भाई ने हमसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तभी आकाश और सुमित ने एक दूसरे की ओर टेढ़ी नजरों से देखा। फिर सुमित उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारा अरमान भाई कहानियों में विश्वास नहीं रखता, वो पूछने से ज्यादा तहकीकात करने में यकीन रखता है। उसे पता था कि अगर वो हमसे कल रात के बारे में कुछ पूछेगा तो हम कोई ना कोई बहाना जरूर बना देंगे। शायद तुम भूल रहे हो, वो डेविल किंग अरमान सिंघानिया है। अगर उसने हमसे ये सवाल नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि इसका जवाब अरमान सिंघानिया खुद ढूंढेगा। अब जैसे ही आकाश और सुमित ने अपना अंदेशा जाहिर किया तो वैसे ही ध्रुव और आहान एकदम परेशान हो गए और वो अटकती हुई आवाज में बोले कि हमें कुछ ना कुछ करके अरमान भाई को सच्चाई तक पहुंचने से रोकना होगा, कम से कम तब तक जब तक एंटीडोट नहीं बन जाता या फिर राजवीर के पास का एंटीडोट हमें मिल नहीं जाता। भले ही वंशिका अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर एंटीडोट बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें सफल होने के चांसेस बहुत कम थे। इस तरह से वो रैंडम एंटीडोट अरमान पर अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि उससे उसका शरीर और ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। वहीं दूसरी ओर, अब जैसे ही अरमान मोहन अपने पावरफुल ओरा के साथ नीचे उतरते हुए आया, उसे देखते ही सब घर वालों की दिल की धड़कन घबराहट के मारे डबल स्पीड से बढ़ने लगी, खासकर उन चारों लड़कियों की, क्योंकि जिस तरह से वो अपने अपने पार्टनर के कंधे पर सर रखकर बेफिक्री से सो गई थी, अब उन्हें लगने लगा था कि उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कम से कम एक बार अरमान के बारे में सोच लेना चाहिए था, लेकिन अब उस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि अरमान तो आज उन्हें घर से उठाकर बाहर ही फेंक देगा, या फिर वो कभी भी अपने अपने पति की शक्ल नहीं देख पाएंगी। अरमान की खतरनाक पर्सनैलिटी, जिसे वे सभी लड़कियां अपनी आंखों से पहले ही देख चुकी हैं, वो उनके लिए कब खतरनाक साबित हो जाए, यही सोचकर सब लोगों के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वहीं अरमान ने बारी बारी से सबको देखा और अचानक उसकी नजरें आस्था के चेहरे पर टिक गईं। आस्था आज नॉर्मल सूट पहने हुए थी, लेकिन बार बार अरमान की आंखों के सामने उसकी खूबसूरती और उसके हारमोनियल सिस्टम की प्रतिक्रिया याद आ रही थी। वो खुद ही अपनी कश्मकश में था, लेकिन उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। तभी दादाजी ने अरमान को देखकर पूछा, अरमान क्या बात है बेटा, तूने आकाश और सुमित को इस तरह स्टडी रूम में क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना? अरमान ने एक नजर दादाजी की ओर डाली और फिर अपनी गर्दन तिरछी करके बोला, क्या बात है दादाजी, आप मुझसे कब से सवाल करने लगे? और रही बात उन चारों की, तो उन्हें मैं हर रोज स्टडी रूम में बुलाता हूँ, आज कुछ स्पेशल दिन है क्या? उसका जवाब सुनकर आस्था के हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। भले ही अरमान नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन उसका एटीट्यूड काफी अलग था, जिसे देखकर आस्था को मन ही मन अजीब सी घबराहट हो रही थी।
वहीं चारों लड़कियां जो एक साथ खड़ी थी, वहीं रौनक फटाफट से वंशिका के कान में फुसफुसाने लगी, मैं तो कहती हूँ हम सब तुरंत जाकर अरमान भाई के पैरों को पकड़ लेते हैं और उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, इससे पहले कि वो हमें मौत के घाट उतार दे। रौनक की ये बात वंशिका को भी सही लगी, लेकिन फिर भी वो आस्था की ओर उम्मीद से देखने लगती है। तभी आस्था ने सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस को संभाला और अगले ही पल थोड़ी हिम्मत जुटाकर अरमान के सामने खड़ी हुई और बेपरवाही से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने बताया नहीं कि आपको कल रात का फेस्टिवल कैसा लगा? मुझे लगता है कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई फेस्टिवल मनाया है। आशा करती हूँ आपको फेस्टिवल पसंद आया होगा। और हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे अपनी गोद में उठाकर मेरे कमरे तक ले आए, वरना मैं तो अपने बेटे के साथ वहीं गिरकर रह जाती। आस्था ने जानबूझकर इस बात का जिक्र किया, क्योंकि वो अरमान को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर सुमित, आकाश और ध्रुव ने किसी लड़की को गोद में उठाया था, तो अरमान ने भी उसे गोद में उठाया था। आस्था के शब्द सुनकर अरमान तुरंत शर्मिंदा हो गया और वो गुस्से भरी नज़रों से आस्था को एकटक देखने लगा। तभी आस्था ने एकदम से सभी लड़कियों को अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्का हल्का मुस्कुराते हुए देखा और नानी माँ ने भी शर्माकर अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में रख लिया। अभिमान जी, जो ज़्यादातर समय अंश को देखते रहते थे, वो ये सुनकर अनजान बनते हुए इधर उधर देखने लगे, लेकिन दादाजी हल्का मुस्कुराकर आस्था से पूछने लगते हैं, आस्था बिटिया, क्या अरमान ने तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे कमरे में छोड़ा था? उनकी बात पर आस्था ने तुरंत हामी भरी, हाँ दादाजी, उन्होंने मेरी मदद की थी, आप तो जानते हैं कि हम तभी कितने थक गए थे। तभी वंशिका आस्था का इशारा समझकर तपाक से बोली, इतना ही नहीं, मेरी मदद ध्रुव जी ने की थी, वरना मैं थककर वहीं पड़ी रहती। रौनक, राधिका और रश्मि ने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ दादाजी, हमारी भी मदद आकाश, सुमित और लाहान ने की थी, वरना हमें नहीं पता था क्या होता। अब सभी लड़कियों ने मिलकर एकदम से सिचुएशन को नॉर्मल बना दिया था। उनकी नौटंकी देखकर अरमान एकदम से चिढ़ गया था। वहीं चारों लड़के अपनी उलझन में फटाफट नीचे आ रहे थे। उन्होंने सबकी बातें सुनी और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, क्योंकि आस्था ने पहले ही सारी सिचुएशन क्लियर कर दी थी। फिलहाल अरमान ने गहरी नज़रों से एक बार फिर आस्था को देखा और तुरंत ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर चला गया। अरमान के वहां से जाने के बाद सब चैन की सांस लेने लगे। आहान तो तुरंत आगे आया और अचानक आस्था को गले से लगा लिया और खुश होकर एकदम से बोला, आस्था भाभी, आप तो महान हैं, आप ग्रेट हैं, अब भगवान हैं। पता नहीं आहान ने खुश होकर आस्था को कितने ही नामों से बुला लिया था। आस्था उसके इस अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हॉल में सभी की हंसी की आवाज गूंजने लगी। तभी नानी माँ आस्था के पास आई और कोमलता से बोली, आस्था बिटिया, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी देर तक जाग रही हो, हम तो आधी रात के बाद अपने कमरे में चले आए थे। आस्था ने कॉन्फिडेंस से कहा, नानी माँ, भले ही कोई हमारे पति की यादें छीन सकता है, लेकिन उनके दिल की धड़कन से हमारा नाम, उनके दिल में हमारे लिए जज्बात कभी कोई नहीं छीन सकता, उनके दिल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। आस्था की ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। फिलहाल चूंकि अरमान फार्म हाउस के लिए निकला चुका था, सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि अब वे भी फटाफट अरमान के साथ जाएंगे और देखें कि अरमान फार्म हाउस में क्या कर रहा है, क्योंकि अरमान को किसी भी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। सबने अपनी अपनी बीवी को गुड बाय बोला और जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। उनके जाने के बाद वंशिका तुरंत आस्था के पास आई और सीरियस एक्सप्रेशन से बोली, आस्था, अब हम एक काम करते हैं, फटाफट प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। वंशिका ने डिसीजन लिया था कि वो जो एंटीडोट बना रही है वो प्रोफेसर प्रशांत की लैब में ही बनाएगी, क्योंकि वहां हर तरह का केमिकल और सारी सुविधाएं मौजूद थी। उसने प्रोफेसर से इस बारे में बात की और उन्होंने बड़े ही पोलाइट तरीके से हामी भरी थी। वंशिका की बात सुनकर आस्था ने हामी भरी और वो दोनों प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके जाने के बाद रश्मि आगे आई और राधिका का हाथ थामकर सॉफ्टली बोली, राधिका तुम्हें मेरे साथ चलना है, ठीक है ना? राधिका ने केवल पलके झपकाई और हामी भरी, ठीक है रश्मि, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद राधिका रश्मि के साथ चल पड़ी। अब घर में केवल रौनक बची थी। रौनक सोचने लगी कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तब तक मैं क्या करूंगी, पूरा दिन मेरा टाइम कैसे कटेगा? ऊपर से वो छछुंदर भी बिना बताए कहीं चला गया है, उसे रोकना भी ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं रौनक अपने मन में सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान एकदम से वसुंधरा की ओर चला गया और वो सोचने लगी, वसुंधरा आंटी है ना, तो मुझे इतना बोर होने की क्या जरूरत, अब वसुंधरा आंटी मेरा एंटरटेनमेंट करेंगी। दोस्तों, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो एपिसोड डेली नहीं दे पा रही हूँ, मौसम चेंज की वजह से तबीयत खराब है, प्लीज कीप पेशेंस।